सॉल्ट लेक सिटी में टेंपल स्क्वायर पर सम्मेलन केंद्र से यह द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स का 182nd जनरल सम्मेलन है। इसमें गिरजा के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों में से चुने गए वक्ता संबोधन करेंगे और इस सत्र का संगीत मॉर्मन गायक मंडली द्वारा होगा। यह प्रसारण बॉनिवल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति इस कार्यक्रम का की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग गिरजा के प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे। भाइयों और बहनों, द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स के 182nd वार्षिक जनरल सम्मेलन में के चौथे सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जिसकी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने मुझे इस सत्र का संचालन करने को कहा है। हम विश्व भर में उन सभी को शुभकामनाएं और आशीष देते हैं जो इन कार्यक्रमों में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या उपग्रह प्रसारण के द्वारा भाग ले रहे हैं। हम जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों का आज सुबह इस सत्र में उपस्थित होने के लिए आभार प्रकट करते हैं। इस सत्र का संगीत मॉर्मन गायक मंडली द्वारा मैक विल्बर के निर्देशन में होगा। क्ले क्रिश्चियनसन और रिचर्ड एलियट ऑर्गन बजाएंगे। गायक मंडली ने कम ये चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड गाकर इस सत्र का आरंभ किया है और अब हमारे लिए प्रेज टू द लॉर्ड द ऑलमाइटी गाएंगे। फिर इस सत्र के एल्डर ब्रेंट एच नीलसन नीलासन प्रार्थना करेंगे।
Oh, हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास प्रार्थना में आते हैं सुबह। दुनिया भर में हम इकट्ठा हैं इस जनरल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में। हम आपसे प्यार करते हैं पिता, हम आपका हाथ सब बातों में स्वीकार करते हैं। हम आभारी हैं आपके बेटे ईसा मसीह के लिए और उसके क्षतिपूर्ति के लिए। हम आभारी हैं गॉस्पल की बहाली के लिए। हम आभारी हैं इस क्वायर के लिए जिन्होंने हमें संगीत सुनाया है। उनके आशीर्वाद दो जो हमें सिखाएंगे आज और जो गाएंगे आज, ताकि वो आपकी आत्मा से प्रभावित हो। हमें अब हमें भी आशीर्वाद दो कि हम सीख पाएं, ताकि हमें आंखें देखने के लिए हो और कान सुनने के लिए हो।
और
हम इन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं ईसा मसीह के नाम से, आमीन।
The choir will now
sing. Gayak Mandali, I am trying to be like Jesus.
Following the singing, President Dieter F. Uchtdorf.
गाने के बाद प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार अध्यक्ष डीटर एफ उक्टोर्फ हमें संबोधित करेंगे। उनके बाद 12 प्रेरितों की परिषद के एल्डर रसल एम नेल्सन बोलेंगे। उनके बाद हम 70 की अध्यक्षता के रोनाल्ड ए रेस्पेंड को सुनेंगे।
Thank you, Tabernacle Choir.
धन्यवाद देते हैं गायक मंडली को. कितना अच्छा गायक मंडली है. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ समय पहले मुझे एक चिंतित माँ ने एक पत्र लिखा जिसमें याचना की गई थी कि जनरल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन के एक विशेष विषय पर बोलूं जिसे विशेषकर दो बच्चों को फायदा मिले. उनके बीच मन मुटाव हो गया था और उन्होंने बातचीत करनी बंद की थी. माँ का दिल टूट चुका था. उस पत्र में माँ ने लिखा था कि इस विषय पर जनरल कॉन्फ्रेंस के संदेश दें जिससे उसके बच्चों के बीच सब ठीक हो जाए. इस भली बहन की सच्ची और दिल की याचना उन कई प्रेरणाओं में से एक है जिन पहले ही प्राप्त कर चुका हूँ इस विषय पर कि मुझे कुछ शब्द कहने चाहिए इस विषय पर. न केवल चिंतित माँ के लिए लेकिन कई गिरजा के सदस्यों में और विश्व में भी एक चिंता का विषय है. मैं इस माँ के विश्वास से प्रभावित हूँ कि जनरल कॉन्फ्रेंस के संदेश से उसके बच्चों के बीच संबंध सुधर जाएंगे. मुझे पता है कि उसका विश्वास बोलने वाले की योग्यता में इतना नहीं जितना परमेश्वर के वचन के प्रभाव में है जिसका प्रभाव लोगों के मनों में अन्य किसी भी बात से अधिक होता है. प्रिय बहन, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा आपके बच्चों के दिलों को छुए. तनावपूर्ण और टूटे हुए संबंध उतने ही पुराने हैं जितने की मनुष्य जाति स्वयं है. अतीत का केन सबसे पहले व्यक्ति था जिसने कड़वाहट और कपट के कैंसर को अपने दिल में जगह दी थी. उसने अपनी आत्मा की भूमि पर बैर और द्वेष के बोए को बोया था और उन भावनाओं को बढ़ने इतना दिया था, मौका दिया था कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी. उसने झूठ के शैतान के पैदा किया था. उन दिनों से आरंभ होकर दुर्भावना और नफरत की आत्मा ने इतिहास में कई दर्दनाक कहानियों को जन्म दिया है. इसने शाऊल को दाऊद के विरुद्ध, याकूब के बेटों को यूसुफ के विरुद्ध किया, लमन और लेम्यूल को नफी के विरुद्ध किया और अमलेकिया को मरोनी के विरुद्ध किया. मैं अनुमान लगाता हूँ कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में द्वेष, नाराजगी और बदले की विनाशकारी आत्मा से पीड़ित हुआ है. शायद कई बार हम अपने भीतर भी इस आत्मा को पाते हैं. जब हमें ठेस लगती है, गुस्सा आता है या ईर्ष्या महसूस करते हैं, तब हमारे लिए दूसरों पर दोष लगाना आसान होता है. अपनी नफरत की भावनाओं को उचित ठहराने के लिए हम अक्सर उनके कामों को दुर्भावना से भरा कहते हैं. अवश्य ही हम जानते हैं कि यह गलत है. सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है. हम सभी उद्धारकर्ता पर निर्भर हैं. हम में से कोई भी उनके बिना नहीं बचाया जा सकता. मसीह का बलिदान असीमित और अनंत है. हमारे पापों की क्षमता शर्तों के साथ मिलती है. हमें पश्चाताप करना चाहिए और हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. यीशु ने सिखाया था, एक दूसरे को क्षमा करो क्योंकि वह जो क्षमा नहीं करता प्रभु से के समुद दंडित किया जाएगा क्योंकि वह सबसे बड़ा पापी है. और धन्य हैं वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी. अवश्य है ये शब्द बिल्कुल उचित लगते हैं जब किसी अन्य पर लागू किए जाते हैं. हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से और आसानी से उन बुरे परिणामों को देख सकते हैं जो दूसरों के बारे में दोष लगाने और नफरत करने से आते हैं. और हम ऐसा अपने लिए बिल्कुल नहीं चाहेंगे जब दूसरों हम पर दोष लगाते हैं. लेकिन जब हमारे स्वयं पर नफरत और दुखों की बात आती है, हम बहुत बार अपने गुस्से को सही बताते हैं क्योंकि और इस किसी पर दोष लगाने को ठीक और उचित ठहराते हैं। यद्यपि हम दूसरे लोगों के दिलों में झांक नहीं सकते, फिर भी हम मानते हैं कि जब हम किसी को देखते हैं, हम उसकी बुरी भावना या यहां तक कि उसके बुरे व्यक्ति को पहचान सकते हैं। जब हमारी स्वयं की कड़वाहट की बात आती है तो हम इसे अपवाद मानते हैं, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि किसी अन्य पर दोष लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है। प्रेरित पौलुस ने रोमियो को अपने पत्र में कहा था कि जो दूसरों पर दोष लगाते हैं दोषी हैं। जिस क्षण हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, वह समझता है हम स्वयं पर दोष लगाते हैं, क्योंकि कोई भी बिना पाप के नहीं है। क्षमा न करना बहुत गंभीर पाप है, जिसके विषय में उद्धारकर्ता ने चेतावनी दी थी। स्वयं यीशु के विषय शिष्य एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे मौके का खोज करते थे और अपने दिलों में एक दूसरे को क्षमा नहीं करते थे, और इस बुराई के कारण उन्होंने बहुत कष्ट सहा और उन्हें बहुत दंडित भी किया गया। हमारे उद्धारकर्ता ने इस विषय में इतनी स्पष्टता से बोला है कि इसकी लिए किसी सफाई की जरूरत नहीं है। मैं प्रभु जिसे चाहूं उसे क्षमा करूंगा, वह कहते हैं, लेकिन यह तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम सभी को क्षमा करो। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। जब प्रभु चाहते हैं कि हम सभी व्यक्तियों को क्षमा करें, इनमें अपने आप को क्षमा करना भी शामिल है। कभी कभी संसार के सभी लोगों में से वह व्यक्ति जिसे क्षमा करना बहुत कठिन होता है, हम स्वयं होते हैं। दूसरों पर दोष लगाने के इस विषय को वास्तव में दो शब्द की सलाह से सिखाया जा सकता है। जब नफरत करने, बुराई करने, अनदेखी करने, मजाक उड़ाने, ईर्ष्या रखने या नुकसान पहुंचाने की बात आती है, कृपया ऐसा करें, इसे रोकें। यह इतना आसान है। हमें केवल दूसरों पर दोष लगाना रोकना है और दोष लगाने के विचार को और अनुभूतियों को परमेश्वर के उनके बच्चों से प्रेम करने में बदलना है। परमेश्वर हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम सभी भाई बहन हैं। मुझे ठीक से पता नहीं कि दूसरों पर दोष न लगाने की बात को जोरदार तरीके से जुनून और दृढ़ता से कैसे कहूं कि यह आपको हमेशा याद रहे। मैं धर्मशास्त्र का उदाहरण दे सकता हूं, मैं सिद्धांत को समझा सकता हूं, मैं गाड़ी के पीछे लगे स्टिकर का उदाहरण भी दे सकता हूं, जिसे मैंने हाल में ही देखा था। यह एक कार के पीछे लगा हुआ था जिसके ड्राइवर दिखने में सभ्य नहीं था, लेकिन दो शब्द स्टिकर में लिखे हुए एक महत्वपूर्ण बात सिखाते थे। इसमें लिखा था, मुझ पर दोष मत लगाओ क्योंकि मैं तुमसे अलग प्रकार के पाप करता हूँ। हमें पहचानना चाहिए कि हम सभी में दोष है, कि परमेश्वर के सामने हम सभी भिखारी हैं। क्या हम सभी कभी न कभी विनम्रता से दया की सिंहासन के पास नहीं जाते और ईश्वर से दया की याचना नहीं करते? क्या हमने अपनी आत्मा की संपूर्ण शक्ति से दया की चाहत नहीं की है कि हम उन गलतियों और पापों के लिए क्षमा किए जाएं जो हमने किए हैं? क्योंकि हम सभी परमेश्वर की दया पर निर्भर हैं। हम कैसे दूसरों उस दया को देने से इनकार कर सकते हैं जिसे हम अपने लिए पाने की इतनी प्रबल इच्छा करते हैं? भाइयों और बहनों, क्या हमें उसी प्रकार दूसरों को क्षमा नहीं करना चाहिए जिस प्रकार हम अपने आप को क्षमा के लिए इच्छा चाहते हैं? क्या यह ऐसा करना मुश्किल है? हाँ बिल्कुल है। अपने आप को और दूसरों को क्षमा करना आसान नहीं। असल में हमें से बहुतों के लिए अपने व्यवहार और सोचने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत होती है, हृदय परिवर्तन की भी जरूरत होती है। लेकिन खुशी की बात है, हृदय का यह बड़ा परिवर्तन ठीक वही है जो यीशु मसीह का सुसमाचार लाने के लिए रचा गया है। यह कैसे किया जाता है? परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। जब हमारे हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरे रहते हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा और पवित्र होता है। हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर विजय प्राप्त करता है। जितना अधिक हम परमेश्वर के प्रेम को हमारे मनों और भावनाओं को नियंत्रण करने देते हैं, जितना अधिक हम स्वर्गीय पिता के प्रति अपने प्रेम को अपने हृदयों के भीतर विकसित होने देते हैं, उतना ही अधिक दूसरों को मसीह के पवित्र प्रेम के साथ प्रेम करना आसान होता है। जब हम अपने हृदयों में परमेश्वर के प्रेम की उज्जवल उशाल का को आने देते हैं, नफरत और शत्रुता का अंधकार और ठंडापन दूर हो जाता है। हमेशा की तरह मसीह हमारे लिए उदाहरण हैं। अपने जीवन में, अपनी शिक्षाओं में उन्होंने हमें मार्ग दिखाया। उन्होंने दुष्टों और मजाक उड़ाने वालों को जो उन्हें मारना और नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनको क्षमा किया। यीशु ने कहा कि जो हमें प्यार करते हैं उन्हें प्यार करना आसान है। ये तो दुष्ट भी कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने उच्च नियम सिखाया। उन्होंने उनके शब्द सदियों से गूंज रहे हैं और आज भी हमारे लिए मान्य रखते हैं। यह उन सभी के लिए है जो उनके शिष्य बनने की चाहत रखते हैं। ये आपके और मेरे लिए है। अपने बुराइयों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब हमारे हृदय परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं, हम एक दूसरे के प्रति दयालु, नर्म दिल, क्षमा करने वाले बन जाते हैं, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारी गलतियों को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करते हैं। मसीह का पवित्र प्रेम हमारी आंखों से नाराजगी और गुस्से पर पर्दे को हटाता है, जिससे हम अन्य लोगों को उसी प्रकार देखते हैं जैसे हमारे स्वर्गीय पिता हमें देखते हैं, कि हम सभी दोषी और अपूर्ण लोग हैं, लेकिन हमारे भीतर इतनी क्षमता और योग्यता है जो कि हमारी कल्पना से परे है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम बहुत अधिक करते हैं। इसलिए हम भी एक दूसरे को प्रेम और क्षमा करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निम्न प्रश्नों द्वारा स्वयं की जांच करें। क्या आपके मन में किसी के प्रति नफरत है? क्या आप किसी के बुराई करते हैं? बेशक जो आप कहते हैं वो सच है। क्या आप किसी को अपने साथ शामिल नहीं करते, दूसरों से दूर रखते हैं या दंड देते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया है? क्या आप अपने मन में किसी की प्रति बैर रखते हैं? क्या आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? यदि आप इन प्रश्नों में से किसी के लिए भी हाँ उत्तर दिया है, तो आप पर वही दो शब्द की सलाह लागू होती है जो पहले बताई थी, इसे रोकें। दो लगाने और शत्रुता के संसार में पत्थर एकत्रित करना और लगाना आसान है, लेकिन ऐसा करने से पहले उनके वचनों को याद रखें जो हमारे स्वामी और आदर्श हैं। तुम में से जो निष्पाप है वह पहले पत्थर लगाए। भाइयों और बहनों, आओ हम अपने पत्थरों को नीचे रखते हैं। आओ हम दयालु बने। आओ हम क्षमा करें। आओ हम शांति से एक दूसरे से बातें करें। परमेश्वर के प्रति के प्रेम को हमारे हृदयों को भरने दें। आओ सभी के साथ भलाई करें। उधारकर्ता ने वादा किया है, यदि दया करो तो तुम्हें भी दया दिया जाएगा। लागू लोग पूरे नाप दबाकर और हिल हिलाकर, क्योंकि जिसे नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। क्या यह वादा नकारात्मक व्यवहार करने के स्थान पर दया, क्षमा और भलाई करने के हमारे प्रयासों को केंद्रित करने के लिए काफी है। आओ हम यीशु मसीह के शिष्य के रूप में बुराई के बदले भलाई करें। आओ हम बदले की भावना या नफरत को अपने ऊपर विजय न पाने दें, क्योंकि लिखा है, पलटा लेने मेरे काम है, प्रभु कहते हैं, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। बुराई से न रहो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints के सदस्यों के रूप में हम जहां भी कहीं हो, आओ हम ऐसे लोगों के रूप में पहचाने जाएं जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भाइयों और बहनों, इस विश्व में पहले ही काफी दुख और दर्द है। इसमें अपनी अड़ियलपन, कड़वाहट और नफरत को इसमें शामिल न करें। हम निपुण नहीं हैं। हमारे आसपास के लोग परिपूर्ण नहीं हैं। लोग ऐसे काम करते हैं जिनसे परेशानी होती है, निराशा होती है और गुस्सा आता है। इस नश्वर जीवन में ऐसा हमेशा होता रहा है। फिर भी हमें अपनी शिकायतों को छोड़ देना चाहिए। नश्वरता के उद्देश्य में भी सिखाना है, हिस्सा है कि कैसे इन बातों को छोड़ें। यह प्रभु का मार्ग है। अपने बोझ को उद्धारकर्ता के चरणों में डाल दो, दोष लगाना छोड़ दो, मसीह के प्रायश्चित को अपने हृदय को बदलने और चंगा करने दें। एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें। इसके बारे में मैं गवाही देता हूँ उनके नाम में जो पूरी तरह से प्यार करते हैं, जिन्होंने अपनी जान दी थी हमारे लिए, उनके पवित्र नाम में। आमीन।
Dear brothers and sisters,
प्यारे भाइयों बहनों, हम तुम्हें आधार देने वाले साथ के और श्रद्धा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आप सबको अपना प्यार भाव देते हैं। हाल ही सिस्टर जेल्सन और मैंने मछली घर में सुंदर मछलियों का आनंद लिया। उज्जवल रंग और आकृति की मछलियाँ उसमें घूम रही थी। पास के नौकर को मैंने पूछा, इन मछलियों को खाना कौन देता है? उसने जवाब दिया, मैं देती हूँ। मैंने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें कभी शुक्रिया दिया है? उसने जवाब दिया, अब तक तो नहीं। मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जो बेखबर है उनके सृष्टा के बारे में, जो उनको जीवन की असली रोटी देता है। वो दिन प्रतिदिन उसकी ओर उसकी भलाई से अनजान जीते हैं। कितना अच्छा होता अगर सब ईश्वर की दिव्य शक्ति और प्यार से परिचित होते और उसे अपना आभार व्यक्त करते। आमन ने सिखाया, हम ईश्वर को शुक्रिया दें क्योंकि वो सदा नेकी के कार्य करता है। हमारे आभार का दर्जा हमारे उनकी ओर का प्यार का प्रमाण है। ईश्वर हमारी आत्माओं का पिता है। उसके पास गौरव भरा हार्ड मांस का शरीर है। हम उसके साथ पैदा होने से पहले स्वर्ग में जिए। अब उसने हमें शारीरिक रूप में उसी के शरीर के समान बनाया है, व्यक्तिगत रूप से। हमारे देवकुल शारीरिक पोषण के बारे में सोचो। हवा, खाना और पानी हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता की ओर से तोहफा है। पृथ्वी को हमारे जीवन के संक्षेप सफर के लिए बनाया गया है। हम पैदा हुए बढ़ने, प्यार, शादी और परिवार बनाने की क्षमता के साथ। शादी और परिवार ईश्वर ने नियुक्त किए हैं। परिवार वक्त और शाश्वत काल के का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक खंड है। ईश्वर की खुशी की योजना में परिवारों को मंदिरों में मोहरबंद करके किया जा सकता है और उसकी उपस्थिति में हम लौट सकते हैं। ये शाश्वत जीवन है। ये इंसानों की परिवार सदस्यों के साथ सदा सहयोग रखने की गहरी कामना पूरी करता है। हम उसके दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। उसने कहा है, मेरा कार्य और गौरव है आदमी की अमरता और शाश्वत जीवन अमल में लाना। ये उद्देश्य पाने के लिए ईश्वर ने दुनिया के से इतना प्यार किया कि उसने अपना बेटा त्यागा जो कि ताकि जो भी उस पर विश्वास करेगा नष्ट नहीं होगा पर शाश्वत जीवन पाएगा। उसने अपने बेटे को दुनिया को दोषी ठहराने नहीं भेजा पर उसके द्वारा दुनिया को बचाने। ईश्वर की शाश्वत योजना उसके बेटा ईसा मसीह के कार्यों पर केंद्रित है। वो ईश्वर के बच्चों के क्षतिपूर्ति करने आया। उसके द्वारा अमरता मुमकिन हुई। क्षतिपूर्ति के द्वारा शाश्वत जीवन भी उन सभी के लिए मुमकिन हुआ जो उसके काबिल बनेंगे। यीशु ने समझाया, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा चाहे मर जाए फिर भी जिएगा। और कोई भी जीवित जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी मरेगा नहीं। प्रभु की क्षतिपूर्ति और पुनरुत्थान के उपहार के लिए और ईस्टर के प्रभावशाली संदेश के लिए ईश्वर को शुक्रिया। शारीरिक उपहार, स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को उनसे प्यार करते हैं और उन्हें शारीरिक और आध्यात्मिक उपहार दिए हैं। जब तुम आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड गाते हो अपने शरीर के उपहार के बारे में सोचो। तुम्हारे शरीर को अद्भुत विशेषताएं तुम्हारी अपनी दैवी रूप की पुष्टि करती है। तुम्हारे शरीर का हर अंग ईश्वर का शानदार उपहार है। हर आंख में खुद केंद्रित होने वाली लेंस है। नर्व और मसल आँखों को केंद्रित करके प्रतिमा बनाती हैं। आँखें दिमाग से जुड़ी है और देखी दृष्टि को रिकॉर्ड करती है। तुम्हारा दिल एक अविश्वसनीय पंप है जिससे चार नाजुक वाल्व रक्त का प्रवाह को दर्शाते हैं। वे वाल्व दिन में लाख से ज्यादा बार खुले और बंद होते हैं, साल में 36 लाख से ज्यादा बार। फिर भी बीमारी से बदले बगैर ये तनाव अनिश्चित काल तक झेलते हैं। शरीर की रक्षा तंत्र पर गौर करो। हानि से बचने को वह दर्द महसूस करता है। इन्फेक्शन होने पर वो एंटीबॉडी निर्माण करता है। त्वचा रक्षण करती है। अधिक सर्दी या गर्मी से होने वाली हानि से सावधान करती है। शरीर पुराने बेकार सेल को नवजीवन देता है। अपने महत्वपूर्ण त्वचा को नियंत्रित करता है। घाव भरती है, टूटी हड्डी को ठीक करती है। जन्म देने की क्षमता ईश्वर भी ने का दिव्य उपहार है। पर हमें याद रखना चाहिए कि हमें दिव्य क्षमता पूरी करने हमें सिद्ध शरीर की जरूरत है। वाकई कुछ मीठी आत्माएं नाजुक और अपूर्ण शरीर में बसी हैं। शारीरिक चुनौतियों से घिरे लोग अक्सर महान आध्यात्मिक शक्ति निर्माण करते हैं उन्हें चुनौतियों से के बदौलत। जिसने भी इंसान के शरीर के कार्य का अभ्यास किया है वो निश्चित ईश्वर की महिमा और शक्ति देखी है। शरीर दिव्य कानून पर आधारित होने की वजह से उपचार भी उस कानून की आज्ञा के पालन पर आधारित है। फिर भी कुछ लोग गलत सोचते हैं कि ये महान शारीरिक गुण संयोग से निर्माण हुए हैं कि किसी बड़े धमाके की वजह से। खुद से पूछो, क्या किसी धमाके से किसी छपाई में धमाका होने से शब्दकोश निर्माण होगा लगभग असंभव है, पर अगर हुआ भी तो क्या फोड़ने पर वो अपने आप को दुरुस्त करेगा? क्या वो नए संस्करण छाप पाएगा? अगर शरीर की साधारण रक्षा, दुरुस्ती, नियंत्रण और पुनरुत्पादन की शक्ति असीमित वक्त तक जारी रहती, जिंदगी भी सदा जारी रहती, हाँ, हम इस धरती पर अटक जाते। दया से निर्माता ने हमारे लिए बुढ़ापन और बाकी प्रक्रियाएं दिए हैं जिनसे अंत में मौत आती है। मौत जन्म जैसे जिंदगी का हिस्सा है। धर्मशास्त्र सिखाते हैं ये जरूरी था कि मनुष्य को इस लौकिक मौत से वापस लाया जाए, नहीं तो खुशी की महान योजना नष्ट होती। ईश्वर के पास मौत के दरवाजे से लौटना उनके प्यारे उनसे प्यार करने वालों के लिए जो मिलाप के लिए तैयार हैं, ये खुशी का मौका है। आखिर वक्त आएगा जब हर आत्मा और शरीर फिर जुड़ जाएगा सिद्ध रूप में, दोनों अंग और जोड़ फिर उचित ढंग से मिलेंगे और फिर जुदा नहीं होंगे। इन शरीरी उपाय के लिए ईश्वर को धन्यवाद हो। शरीर महत्वपूर्ण है, पर हमें शाश्वत आत्मा, उसमें अशाश्वत आत्मा बसती है। पैदा होने से पहले भी हमारी आत्मा जीवित थी और मरने के बाद भी जीवित रहेगी। आत्मा शरीर को सजीव बनाती है और चरित्र देती है। इस जीवन में और आने वाले जीवन में शरीर और आत्मा जब जुड़ती है, अनमोल जीवित जीवात्मा बनती है। आत्मा महत्वपूर्ण होने के कारण उसका विकास शाश्वत महत्व का है। वो शक्ति पाती है जैसे हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना द्वारा संपर्क करते हैं। जिन गुणों से हम एक दिन हमें परखा जाएगा सभी आत्मिक है। इनमें शामिल है प्रेम, सद्गुण, निष्ठा, दया और दूसरों के लिए सेवा भाव। तुम्हारी आत्मा जो शरीर से जुड़ी और उसमें बसी है, इन गुणों को ऐसे निर्माण और व्यक्त कर सकती है जो तुम्हारे शाश्वत विकास के लिए जरूरी है। आत्मिक विकास की सीढ़ियां विश्वास, पछतावा, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का उपहार और अंत तक टिके रहना। इनमें शामिल है मंदिर में एंडाउमेंट की और मोहबंदी। जैसे शरीर को प्रतिदिन भोजन की जरूरत है, आत्मा को भी पोषण आवश्यक है। आत्मा का पोषण शाश्वत सच्चाई से होता है। पिछले साल राजा जेम्स बाइबल के अनुवाद के 400 साल पूरे हुए। मॉर्मन की किताब हमारे पास लगभग 200 साल से है और 107 भाषाओं में वो अनुवादित हुई है। इन और अन्य बहुमूल्य धर्मशास्त्रों के कारण हम जानते हैं परमेश्वर हमारा शाश्वत पिता है, उनका बेटा यीशु हमारा मसीह और मुक्तिदाता है। इन आत्मिक उपायों के लिए परमेश्वर को शुक्रिया। हम जानते हैं कई युग के पैगंबर जैसे आदम, नूह, मूसा, इब्राहिम सब ने स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह की दिव्यता सिखाई है। हमारे वर्तमान युग के स्वर्गीय पिता को स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह ने परिचित किया जब वे पैगंबर जोसेफ स्मिथ को 1820 में प्रकट हुए। गिरजे की 1830 संगठन किया गया। जब 182 साल बाद हम अब भी सुसमाचार को हर राष्ट्र जाति भाषा और लोगों में फैलाने के लिए अनुबंधित हैं। ये करने से दोनों देने वाले और पाने वाले को आशीष मिलेंगे। हमारी जिम्मेदारी है उनके बच्चों को सिखाकर परमेश्वर के ज्ञान में जागरूक करना। काफी समय पहले राजा बेंजामिन ने कहा, परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखो कि उन्होंने सब बनाया दोनों स्वर्ग और पृथ्वी में, कि उनके पास सब विवेक और शक्ति है दोनों स्वर्ग और पृथ्वी पर। विश्वास रखो कि तुम्हें पापों का से पछता कर उन्हें त्यागना पड़ेगा। परमेश्वर के सामने विनम्र मन के दिल की गहराई से माफी मांगनी पड़ेगी। यदि तुम ये सब मानते हो तो इन्हों किया करो। परमेश्वर कल आज और एक जैसा है, पर हम नहीं हैं। हर दिन हमारी चुनौती है क्षतिपूर्ति की शक्ति आजमाना, ताकि हम सचमुच बदल पाएं, मसीहा समान बन पाए और उमंग का उपहार के योग्य बन पाए, और सदा परमेश्वर यीशु मसीह और उनके परिवारों संग और अपने परिवारों संग रह पाए। इन शक्तियों, सौभाग्य और सुसमाचार के उपहारों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। मैं बयान देता हूँ कि वो जीवित है, यीशु ही मसीह है, कि उसका बहाल गिरजा है। हमारे नेता प्रधान थॉमस एस मानसन को हम सारे दिल से प्यार और समर्थन करते हैं। उनके साथ उनके सलाहकारों और बाबा दमूतों को हम पैगंबर दूरदृष्टि और प्रकटकर्ता के रूप में समर्थन करते हैं। मैं ये बयान यीशु मसीह के पवित्र नाम से देता हूँ। आमेन।
For the past 20 months,
पिछले 20 महीने से हमारे परिवार के बहुत विशेष बच्चे को पाने का सौभाग्य मिला है। छोटा पेक्सटन हमारा पोता बहुत असामान्य क्रोमोसोम संबंधी विकार के साथ पैदा हुआ, जिसके कारण वह सैकड़ों बच्चे में विशेष था। पेक्सटन के जन्म के साथ हमारी बेटी और उसके पति की अपरिचित जीवन बदलने वाली यात्रा प्रारंभ हो गई। यह अनुभव अनंतता का साथ जुड़े विशेष पाठों के सिखाने का माध्यम बन गया। 12 प्रेरितों की परिषद के एल्डर रसल एम नेल्सन ने सिखाया है, अनजान कारणों से कुछ लोग शारीरिक कमजोरी के साथ पैदा होते हैं। शारीरिक को विशेष भाग असामान्य हो सकते हैं, सांस लेने की प्रणाली में विकार हो सकता है, और हम सभी के शरीर रोग और मृत्यु के अधीन है। फिर भी शरीर एक बहुमूल्य उपहार है। दिव्य भाग्य के पाने के लिए परिपूर्ण शरीर की आवश्यकता नहीं है। असल में कुछ सबसे मधुर आत्माएं कमजोर शरीर में पाई जाती है। अंततः वह समय आएगा जब प्रत्येक आत्मा और शरीर फिर से एक होगी परिपूर्ण अवस्था में। अंग और जोड़ देने फिर से आरंभिक अवस्था में पुनः स्थापित हो गए हैं। फिर यीशु मसीह के प्रायश्चित के लिए धन्यवाद, हम उसमें परिपूर्ण हो सकते हैं। आप सब जिनके पास चुनौतियां, चिंताएं, निराशाएं और अपने प्रिय के कारण दुख है, ये जान लें परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता असीमित और अनंत प्रेम से आपके दुखी जनों को प्रेम करता है और वह आपके प्रेम करता है। कुछ पूछ सकते हैं, जब इन कष्टों के सामने करते हैं तो कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ऐसा होना दिया? और फिर यह निश्चय यह प्रश्न उठता है, ऐसे मेरे ही साथ क्यों हुआ? हमें क्यों रोग और उन घटनाओं का अनुभव करना चाहिए? यह परिवार के बहुमूल्य सदस्य को कमजोर बनाता है, वापस बुला लिया जाता है, या वो कई सालों तक दुख सहते हैं, ये दुख क्यों है? ऐसी क्षण पर हम अपने स्वर्गीय पिता द्वारा बनाए इस सुख की महान योजना की ओर मुड़ सकते हैं। वह योजना जब पृथ्वी पूर्व जीवन में पेश की थी, हम लोग खुशी से चिल्ला उठाते। संचित में यह जीवन अनंत उत्कर्ष के लिए प्रशिक्षण है, और इस प्रक्रिया का अर्थ परीक्षा और चुनौतियां है। हमेशा से ऐसा ही होता रहा, और इससे कोई बचा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा रखना हमारी नश्वरता का केंद्र है। उसमें विश्वास के साथ ऐसा समय में जब प्रश्न अधिक और जवाब कम होते हैं, हम मसीह के प्रायश्चित का उपयोग करते हैं। अपने पुनरुत्थान के बाद अमेरिका में भेद करते समय हमारा उतारकर्ता यीशु मसीह है, उस निमंत्रण के साथ सबके पास पहुंचा। तुम्हारे बीच कोई रोगी है, उन्हें यहाँ लाओ। तुम्हारे बीच कोई लंगड़ा या अंधा या लकवाग्रस्त या घायल या कौड़ी या जो सुखा या बहरा या कोई किसी भी प्रकार से रोगी हो, उन्हें यहाँ लाओ और मैं उन्हें चंगा करूंगा। क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए करुणा आती है, मैं दया से भर गया हूँ। और ऐसा हुआ कि जब वो ऐसा बोला चुका, सारी भीड़ एक इच्छा के साथ अपने रोगियों और अपने पीड़ित और अपने लंगड़े और अपने अंधे और अपने बहरों और अपने सभी के साथ जो किसी भी प्रकार के रोगग्रस्त थे, उनके साथ आगे बढ़ी और उसने उनमें से प्रत्येक को चंगा किया जब वे उसके सामने लाए गए थे। इन शब्द में बहुत शक्ति पाई जो शक्ति है। सारी भीड़ आगे बढ़ी। सब भाई और बहनों, हम सभी चुनौतियों के सामना करते हैं। फिर यह वाक्यांश जो किसी भी प्रकार के पीड़ित है, हम सब पहचान सकते हैं कि हम नहीं पहचानते। बहुमूल्य पेक्सटन के जन्म के तुरंत बाद हम जानता था स्वर्गीय पिता हमें आशीष देगा और हमें विशेष पाठ सिखाएगा। जब उसके पिता और मैंने उसके छोटे सिर पर कहीं पर्वतीय आशीषों में प्रथम के लिए उंगलियां रखी, मेरे मन में योना के 9वें अध्याय के शब्द आए कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम निश्चित रूप में पाकिस्तान के द्वारा प्रकट हो रहा है। हम सेवा के बाम संघर्ष भावनाओं, सहानुभूति के आंसुओं द्वारा और प्रार्थना और जरूरत के समय प्रियजनों के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति, विशेषकर पाकिस्तान और उसके माता पिता के लिए विश्वास और आवाज प्रकट करना सीख रहा है। अध्यक्ष जेम्स ई फास्ट ने कहा था, मैं उन प्रेमी माता पिता की बहुत प्रशंसा करता हूँ जो सहनशील रहते हैं और उस बच्चे के लिए अपनी पीड़ा और दिल के दर्द पर विजय पाते हैं जो गंभीर मन रोग या शारीरिक विकलांगता का साथ पैदा हुआ और यह रोग बाद में विकसित होते हैं। यह पीड़ा माता पिता के यह बच्चे के जीवन काल तक बिना राहत दिए लगभग प्रतिदिन जारी रहती है। अक्सर माता पिता को दिन या रात अतिमानवीय रूप से पालन पोषण करना होता जो कभी बंद नहीं होता। अपने विशेष बच्चों के आराम देते हुए और कष्ट को दूर करते हुए बहुत ही सी माओं के बाहों और दिल हमेशा दर्द करते रहते हैं। जैसा मुसाह में व्याख्या की गई है, हमारे पास पेक्सटन के परिवार के मिले उदारकर्ता के शुद्ध प्रेम की गवाही है जो सबों के लिए उपलब्ध है। वो बोझ अल्मा और उसके भाइयों के ऊपर लाद जाता था, वो जब हल्का हो गया क्योंकि प्रभु ने उनके बलवान कर दिया जिससे अपने बोझों को सरलता के साथ ढो सके। और उन्होंने प्रसन्नता और सहनशीलता के साथ प्रभु की सभी इच्छाओं को स्वीकार किया। पेस्टन के शुरू के दिन में एक रात हम सॉल्ट लेक सिटी यूटा में बहुत बढ़िया प्राइमरी चिल्ड्रन मेडिकल सेंटर के नवजात शिशु आईसीयू में डॉक्टर नर्सों और देखरेख करने वालों की समर्पित सजग सेवा देखकर आश्चर्य कर रहे थे। मैंने अपनी बेटी से पूछा, हम इन सब को भुगतान कैसे करूंगी, और मैंने अनुमान लगाने के साहस किया खर्चा कितना हो सकता था। सामने खड़ा डॉक्टर ने कहा कि मेरा अनुमान बहुत कम था और कि पेस्टन की देखभाल का खर्च मेरे अनुमान से बहुत अधिक था। हमें पता चला कि इस अस्पताल के देखभाल का अधिकतर खर्चा दूसरों द्वारा उदारता से दिए समय और आर्थिक योगदान से होता है। उसको शब्द ने मुझे विनम्र कर दिया जब मैंने उनकी नजर में इस छोटे बच्चे की जान के मूल्य बारे में विचार किया जो इतने सावधानी से उसकी देखभाल कर रहे हैं। मुझे इसी तरह के जान पहचान प्रचारक धर्मशास्त्र की याद आई जा आई जिसके अर्थ नया था। याद रखो, परमेश्वर की नजर में व्यक्तियों को मूल्य महान है। प्रभावशाली तरीके से परमेश्वर के लिए शारीरिक और आत्मिक दोनों के रूप में व्यक्ति के मूल्य के बारे सीखते हुए मैं रोया जब मैंने हम में से प्रत्येक के लिए हमारे स्वर्गीय पिता और उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के असीम प्रेम पर मनन किया। पिक्सन के परिवार ने सीखा था कि उनको चारों तरफ असंख्य स्वर्गीय और पार्थिव सेवा करने वाले स्वर्गदूत मौजूद रहते हैं। जब जरूरत होती है चुपचाप आते और चुपचाप चले जाते। अन्य दरवाजे पर खाना लिए, कपड़े धोने के लिए, भाई बहनी को लाने न जाने के लिए, उत्साह देने के लिए और विशेषकर पैक्सटन की प्रार्थना करने के लिए खड़े रहते हैं। इस प्रकार का दूसरा विशेष पाठ सिखा गया। यदि आप किसी डूबते हुए व्यक्ति को देखते हो तो क्या आप उसे पूछोगे कि उसे मदद चाहिए या तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूदोगे और उसे डूबने में बचाओगे? मदद देने की पेशकश जबकि बहुत अच्छा अर्थ है और अक्सर बोला जाता है मुझे बताना यदि मेरी मदद चाहिए हो। असल में यह किसी भी प्रकार की मदद नहीं है। अपने आसपास के लोगों के जीवन को जानकारी और दिलचस्पी रखने की महत्वपूर्ण मूल्य को हम निरंतर सीखते हैं। न केवल मदद देने की मदद को सीखते हुए लेकिन उस अत्यधिक आनंद को भी जो दूसरा की मदद करने से मिलते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन जो कुचले हुए को ऊपर उठाने का शानदार उदाहरण है ने कहा रहा था, परमेश्वर उन सबको आशीष देता है जो अपने भाई को रखवाल बनने के प्रयास करते हैं, जो कष्ट में मदद करते हैं, जो संसार के बेहतर बनाने के लिए उनके भीतर जो कुछ भी अच्छा है उसे करने का प्रयास करते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि ऐसे व्यक्ति को पास सुंदर मुस्कान होती है, उनके कदम बहुत निश्चित होते हैं, उनके पास तृप्ति और संतुष्टि का अभाव होती है, क्योंकि आपने लिए बहुत अधिक आशीष पाए बिना कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। यद्यपि हम सभी परीक्षाओं कठिनाइयों कमजोरियों कष्टों और हर प्रकार के दुखों का सामना करेंगे, हमारा देखभाल करने वाली प्रेमी उद्धारकर्ता हमेशा हमारे लिए वहाँ होगा। उसने वादा किया है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मैं जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारे मन न घबराओ और न डरे। हमारे बहादुर पेक्षण के लिए हम स्वर्ग में अपने पिता की कितने आभारी हूँ, उसके द्वारा प्रभु अपने कामों को दिखाता और हमें ये महत्वपूर्ण पवित्र और मिसेस पाठों के सिखाना जारी रखता है। मैं ये प्रिय तिस्तु गीत के साथ समाप्त करना चाहूंगा। हम तब तक युद्ध में शामिल जब तक समाप्त न हो। हम आनंदित हैं। सेना में योद्धाओं एक शानदार मुकुट रखा है, जल्दी ही हम उसे जीतेंगे और पहनेंगे। भाइयों और बहनों, यह मेरी आशा और प्रार्थना है कि हम उदारता से अपने बोझों को उठाएगा और उनकी मदद के लिए पहुंचेगा जो हमारे बीच कष्ट उठा रहे हैं और जिन्हें उठाए जाने के और उत्साह की जरूरत है। खास हम उसकी विशेष आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसके बच्चों की विनम्र सेवा करने के लिए स्वर्ग में हमारे पिता के साथ अपनी प्रतिज्ञा को फिर से नया करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।
The choir and congregation.
अब गायक मंडली और सभा मिलकर Rejoice, the Lord is King, स्तुति गीत गाएंगे।
Following the singing,
गाने के बाद हम बहन जूली बी बैक को सुनेंगे, जिन्हें कल सहायता संस्था की जनरल अध्यक्षता की सेवा से मुक्त किया गया था। बहन बैक की वार्ता के अंत में 12 प्रेरितों के परिषद के एल्डर डी टॉड क्रिस्टोफर्सन हमें संबोधित करेंगे। उसके बाद गायक मंडली Let us oft speak kind words, Gaiki.
This is the 182nd Annual General Conference.
ये 182nd Annual General Conference है, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints का.
Grateful for that wonderful song.
हाल के साल मैं इस हिम की बहुत आभारी हूँ. हाल के सालों में मैं शायद संस्था के उद्देश्यों और गुणों, इसके इतिहास के मूल्य, इसके काम और धार्मिक शिक्षा और मलकिसिदक पुरोहित पुरुषों के साथ इसके योगदान के विषय में बात करने के लिए प्रभावित हुई हूँ. शायद संस्था के संदर्भ में भविष्य वक्ताओं के दिव्य दर्शन पर अब कुछ ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण लगता है. ठीक जैसे प्रभु के भविष्यवक्ताओं ने निरंतर एल्डरों और उच्च याजकों को उनके आदेश और कर्तव्यों को सिखाया है, उन्होंने बहनों की शायद संस्था के लिए भी अपने दिव्य दर्शन को बांटा है. इसकी उनकी सलाह से ये स्पष्ट है कि शायद संस्था के उद्देश्य विश्वास और व्यक्तिगत धार्मिकता को बढ़ाना, परिवारों और घरों को मजबूती देना और जरूरतमंद की खोज और मदद करना है. विश्वास, परिवार और सहायता, ये तीन सरल शब्द गिरजे में बहनों को व्यक्त करते हैं भविष्यवक्ता की दिव्य दर्शन से. पुरस्कार के शुरू से भविष्यवक्ताओं ने दिव्य दर्शनों से बांटा है मजबूत विश्वसनीय उद्देश्यपूर्ण स्त्रियों जो कि अपने अनंत मूल्य और उद्देश्यों को जानती है. जब भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने शायद संस्था को स्थापित किया था, उन्होंने इसकी प्रथम उद्देश्य को गरीब को देखभाल करते हुए, उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए, उस के विभिन्न कामों को करते हुए इस संस्था को अध्यक्ष करने का निर्देश किया. उन्होंने इस संगठन की कल्पना संसार की सभी बुराइयों से अलग एक चुनी हुई संस्था के रूप में की थी. ब्रिगम यंग गिरजे के द्वितीय अध्यक्ष ने अपने सलाहकारों को और 12 प्रेरितों की पुरुषित को और धर्मशास्त्रों को निर्देश दिया, बहनों की विभिन्न वार्डों में महिलाओं की सहायता संस्था संगठित करने दो. उन्होंने आगे कहा था, उन्होंने कुछ सोचते हैं ये मामूली संस्था है लेकिन ये नहीं है. बाद में भविष्यवक्ता जोसेफ एफ स्मिथ ने कहा था, सांसारिक संघर्ष से भिन्न जो कि मानव निर्मित है, सहायता संस्था दिव्य रूप से बनी है, दिव्य से अधिक है. भविष्यवक्ता जोसेफ फील्डिंग स्मिथ ने बहनों को कहा है था कि उन्हें कई महान काम करने के लिए शक्ति और अधिकार दिया गया है. उन्होंने कहा था, आप संसार में स्त्रियों की सबसे महान संगठन की सदस्य हो, ऐसा संगठन जो प्रवृत्ति पर परमेश्वर के राज्य का एक जरूरी हिस्सा और जिसे ऐसा बनाया और संचालित किया गया है कि सब इसके विश्वासी सजग को हमारे पिता के राज्य में अनंत जीवन पाने में मदद करेगा. हर साल हजारों औरतें और युवकाएं इस में निरंतर बन रहे बहनों के दायरे का हिस्सा बन रही है. इसके बाद जहाँ कहीं वे रहती है और जहाँ कहीं वे सेवा करती है, वे सहायता संस्था में अपनी सदस्यता और सहयोग को कायम कर रखती है. इसके महत्व के कारण प्रथम अध्यक्षता ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि युवतियों 18 वर्ष की होने से पहले ही शायद संस्था में आने की अपनी तैयारी शुरू कर दें. सहायता संस्था एक कार्यक्रम नहीं है, ये प्रभु के गिरजे का अधिकारिक हिस्सा है जिसे बहनों को विश्वास, परिवार और सहायता के अपने उद्देश्य को सिखाने, मजबूती और प्रेरणा देने के लिए दिव्य रूप से परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है. सहायता संस्था एलडीएस औरतों के लिए जीने का रास्ता है और उसका प्रभाव रविवार की कक्षा या सामाजिक मेल जेल से कहीं अधिक रहा है. शायद संस्था अंतिम दिनों की संत स्त्रियों के लिए प्रभु यीशु मसीह और अतीत में उसके गिरजे के प्रेरितों के साथ सेवा करने वाली महिला शिष्यों के उदाहरण का अनुकरण है. हमें सिखाया गया है कि एक स्त्री के लिए ये जरूर है कि वह सहायता संस्था द्वारा प्रौद्योगिक गुणों को अपने जीवन में अपनाए, जैसे कि पुरुषों के लिए जरूर है कि वह अपने पुरोहित द्वारा प्रौद्योगिक चरित्र से चिन्हों को अपने जीवन में निर्माण करे. जब भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने सहायता संस्था को संगठित किया था, उन्हें बहनों को सिखाया कि वे गरीब को राहत और आत्माओं को बचाएं. वे अपने कर्तव्यों में बहनों की प्रभाव के व्यक्त द्वारा को संगठन करने और भाग लेने का अधिकार है. पहली साथ संत को नियुक्त किया गया स्क्रिप्चरों को समझाने और अभी भी साथ संस्था के पास परमेश्वर के गिरजे में सिखाना है. जब जोसेफ स्मिथ ने बहनों को कहा था कि साथ संस्था का संगठन उन्हें पुरोहित के सामर्थ्यों, आशीषों, उपहारों को लेने के लिए तैयार करेगा, उनके लिए प्रभु के उद्धार का काम आरंभ हो गया था. आत्माओं को बचाने में सुसमाचार बांटना और प्रचारक काम में भाग लेना शामिल है. इसमें मंदिर के व्यस्त रहना और पारिवारिक इतिहास कार्य करना शामिल है. इसमें आत्मिक रूप से और सांसारिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए जो कुछ संभव हो उसे करना शामिल है. एल्डर जॉन ए विट्सो ने घोषणा की थी, सहायता संस्था गरीबी से राहत, लापरवाही से राहत, उन सब से जो स्त्री के आनंद और विकास में उर्जन डालते हैं, कितनी सुंदर कार्यभार है. अध्यक्ष बॉयड के पैकर ने शायद संस्था की तुलना सुरक्षा दीवार से की थी. बहनों और उनके परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी देखभाल और बेन करना वाली शिक्षकों महत्व की बराती है. एक दूसरे की सेवा करने से हमारे प्रयास प्रभु के साथ हमारे अनुबंधों को याद रखने की सहमत को भी प्रकट करता है. जरूरतमंद और पीड़ित के सेवक के रूप में हम धर्म दक्ष के साथ मिलकर संतों के सांसारिक और आत्मिक जरूरतों को ख्याल रखते हैं. अध्यक्ष स्पेंसर डब्ल्यू कैंबल ने कहा है, बहुत सी बहनें हैं जो चित्रों में रहती हैं, आत्मिक चित्रों में. वे शानदार वस्त्रों की हकदार हैं, आत्मिक वस्त्र. उनके घर जाना और वस्त्रों को बदलना ये आपका सौभाग्य है. अध्यक्ष हैरोल्ड बी ली ने इस दिव्य दर्शन को बांटा था. उन्होंने कहा था, क्या आप देख नहीं सकते हैं क्यों प्रभु ने शायद संस्था को इन घरों में जाने को कहा है? क्योंकि स्वयं मास्टर के गिरजे में अन्य कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास इतना प्रेमी स्पर्श हृदयों की और इन व्यक्तियों के जीवन की संपूर्ण समझ है. अध्यक्ष जोसेफ एफ स्मिथ ने सहायता संस्था की बहनों और इसके मार्गदर्शन को ये कहकर सावधान किया था कि वे उस समय को नहीं देखना चाहते जब हमारी सहायता संस्था स्त्री निमंत्रित संगठनों के साथ मिलकर उनका अनुसरण करती है और अपनी पहचान खो देती है। उन्होंने बहनों से संसार को मार्गदर्शन करने और संसार की स्त्रियों का उस हर उस वस्तु की जो प्रशंसा के योग्य है, हर उस वस्तु की जो परमेश्वर समान है, हर वो वस्तु जो ऊपर उठाती है, उसकी सलाह किसी भी तरह की परंपराएं, विश्व सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं को दूर करने पर जोर देती है जो हमारी उद्देश्यों और निर्देशक संस्था के सिद्धांतों से नहीं मिलती। लीडरों जो प्रतिकरण प्राण का प्रयास करती है और सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक सभा, पाठ, कक्षा, गतिविधि और प्रयास सहायता संस्था के उन उद्देश्यों को पूरा करते हैं जिनके मिल ये संगठित की गई थी। सामाजिकता, मित्रता, एकत्र हम चाहते हैं ये प्रभु के साथ मिलकर सेवा बने के मधुर परिणाम बन जाएगी। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सो और उनके सलाहकार ने अभी गवाही दी है कि प्रभु ने सुसमाचार की पूर्णता की भविष्यता जोसेफ स्मिथ के द्वारा पुनर्स्थापित किया है। उनकी इच्छा के प्रमाण के रूप में कि सहायता संस्था की महत्वपूर्ण विरासत को संभाल कर रखा गया। प्रथम अध्यक्षता ने हाल ही में विश्वभर में डॉटर्स इन माई किंगडम द हिस्ट्री एंड द वर्क ऑफ रिलीफ सोसाइटी को प्रकाशित और वितरण करवाया है। इस पुस्तक के अंदर हम परिवारों में और गिरजों में बहनों और भाइयों के मिलकर काम करने के नमूनों और उदाहरण को पा सकते हैं और काम हर हम कौन हैं, हम क्या विश्वास करते हैं और हमें क्या बचाना चाहिए के विषय में सिद्धांतों को सिखाया जाता है। हमें प्रथम अध्यक्षता द्वारा इस महत्वपूर्ण पुस्तक को पढ़ने और उसकी अनंत सच्चाइयों और प्रेरणादायक उदाहरणों से अपने जीवन को प्रभावित करने के लिए उत्साहित किया गया है। जब बहने सहायता संस्था के उद्देश्यों से अधिक तालमेल बना लेंगी, विश्ववक्ताओं के दिव्य दर्शन पूरे हो जाएंगे। अध्यक्ष किम्बल ने कहा था, इस संगठन सहायता संस्था में जो शक्ति है उसे सियोन के घरों को मजबूती देने और परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने के लिए अभी तक परिपूर्ण से उपयोग नहीं किया गया है। ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक बहनों और पुरोहित दोनों साथ संस्था के दिव्य दर्शन को नहीं पाते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अंतिम दिनों में गिरजे का अधिकतर विकास होगा क्योंकि संसार की भली स्त्रियों जिनमें अक्सर आत्मिकता की आंतरिक ज्ञान होता है अधिक संख्या में गिरजे में आएंगी। ये इस हद तक होगा कि गिरजे की स्त्रियों को शेष और भिन्न रूप देखा जाएगा आनंद के मानों में संसार की स्त्रियों से। मैं सहायता संस्था के लिए भविष्यवक्ताओं के दिव्य दर्शन की आभारी हूँ। मैं अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकली के समान निश्चित हूँ कि कहीं भी कोई भी संगठन इस गिरजे की सहायता संस्था की बराबरी नहीं कर सकता। सहायता संस्था के लिए भविष्यवक्ताओं के दिव्य दर्शन के साथ अपने तालमेल बैठाना अब ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम अपने विश्वास का निकास करती परिवारों को मजबूत देती और राहत पहुंचाती हैं। मैं अध्यक्ष लोरेंजो स्नो के शब्द में साथ समाप्त करूंगी, सहायता संस्था भविष्यवादों में वादों से भरा है। जब गिरजे का विकास होगा उसकी उपयोगिता का क्षेत्र उसी अनुपात में बढ़ेगा और ये बुलाई के लिए पहले से भी अधिक प्रभावकारी होगा। उन बहनों से जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मदद करती उन्होंने कहा था, जब आप इन कामों में मेहनत करती हो तो आप निश्चित रूप से इस काम की विजय और उत्कर्ष और महिमा में जो प्रभु अपने विश्वासी बच्चों को देगा शारीरिक होगी। इस दिव्य दर्शन की गवाही मैं भी यीशु मसीह के नाम में देती हूँ। आमेन।
हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर बेक को, सिस्टर ऑलरेड और सिस्टर थॉमसन को और रिलीफ सोसाइटी बोर्ड को। हाल ही में हमने द चर्च जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटरडे सेंट्स में लोगों की बढ़ती रुचि को देखा है। इसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि अंततः हमारा मूलभूत उद्देश्य यीशु मसीह के सुसमाचार पूरे संसार में सिखाना है। लेकिन हम स्वीकार करना चाहिए कि हम सिद्धांत के बारे में और यह कैसे स्थापित हुआ है इसको लेकर भ्रम रहा है। आज हम इस विषय पर कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। उद्धारकर्ता के प्रेरितों ने उनके सिद्धांत को बचाने के लिए झूठी परंपरा और दृष्टिकोण के वार से कड़ा संघर्ष था। प्रेरितों की सेवकाई के दौरान व्यापक स्वधर्म त्याग पहले से ही जारी गया था। आने वाली शताब्दियों में 19वीं शताब्दी के सुसमाचार की किरण यदा कदा और फिर बढ़ते प्रकाश के द्वार जगमाने लगी थी। पुनः स्थापित की चमकदार सुबह संसार में होने लगी थी और मसीह का सुसमाचार पूर्ण और संपूर्ण पृथ्वी एक बार फिर से आने लगा था। यह महिमापूर्ण दिन तब शुरू हुआ जब रोशनी सूर्य की चमक से अधिक एक खंभे में परमेश्वर पिता और उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने युवा जो स्मिथ से भेंट की और इसने उसे आरंभ किया जो वास्तव में प्रकटीकरण से संबंधित दिव्य शक्ति के और अधिकार का सेबल सब बन गया। यीशु ने स्वयं उस सिद्धांत की व्याख्या इन शब्दों में की थी जो मॉर्मन की पुस्तक यीशु मसीह के अन्य नियम में लिखा है। जिस सिद्धांत को पिता ने मुझे दिया है वह मेरा सिद्धांत है और मैं पिता के तत्व को लेता हूँ और पिता मेरे तत्व को और पवित्र आत्मा मेरे और पिता के तत्व को स्वीकार करता है और मैं इस सत्य को लाता हूँ कि पिता हर एक मनुष्य और सभी जगह ये आज्ञा देते हैं कि वे पश्चाताप करें और मुझ पर विश्वास करें और जो मुझ में विश्वास नहीं करेगा वह बपतिस्मा लेता है वही बचाएगा जाएगा और वही लोग जो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे और जो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे बपतिस्मा नहीं लेंगे वे अत्यधिक योग को प्राप्त होंगे और ये मेरा सिद्धांत है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये मेरा सिद्धांत है जो अपना निवास इस पर बनाएगा वो कभी नहीं हिलेगा। यह हमारा संदेश है वह चट्टान जिसकी नींव पर हमने गिरजा की हर चीज का निर्माण किया है वह सब कुछ जो भगवान से आता है। यह सिद्धांत शुद्ध है यह स्पष्ट है समझने में सरल है एक बच्चा भी समझ सकता है। आनंदित हृदय के साथ हम सभी इसे पाने का निमंत्रण देते हैं। इन द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स में हमने उन सब बातों पर विश्वास करते हैं जो हमें परमेश्वर ने प्रकट किया है वे सब जो वे अब प्रकट करते हैं और हम विश्वास करते हैं जो परमेश्वर राज्य के संबंध में अभी कई महान और महत्वपूर्ण बातें प्रकट करेंगे। इसका यह मतलब है कि बहुत सी बातें अभी हम नहीं जानते हैं जो सच्चाइयां और सिद्धांत हमें मिले हैं वह दिव्य प्रकटीकरण से मिले हैं और निरंतर मिलते रहेंगे। विश्वास की कुछ परंपराओं में धर्मशास्त्री इसी के समान धार्मिक कड़ी के अधिकार का दावा देते हैं और सिद्धांतिक विषय विचारों के मतभेद हो सकते हैं। कुछ मुख्य योग्यों और संप्रदायों की संभावित परिस्थितियों पर निर्भर हैं। अन्य मुख्य और अध्ययनशील प्रयासों जैसे बाइबल संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या और विवरण पर देते हैं जैसे अतीत में था मसीह के सिद्धांतों का स्थापित करना था या सैद्धांतिक परिवर्तनों को सही करना उनके लिए दिव्य प्रकटीकरण का विषय है जिन्हें प्रभु प्रेरित अधिकारियों के से एंडाव करते हैं। 1954 में अध्यक्ष जे रूबन क्लार्क जूनियर तब प्रथम अध्यक्षता में सलाहकार ने समझाया कि कैसे सिद्धांत गिरजा में और गिरजा के अध्यक्ष की प्रमुख भूमिका में लागू होते हैं। प्रथम अध्यक्षता के सदस्यों और 12 प्रेरितों की परिषद के सदस्यों के बारे में बोलते हुए उन्होंने बताया हम यह ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ जनरल अधिकारियों को विशेष नियुक्ति मिली है उनके पास विशेष उपहार थे उन्हें भविष्यवक्ता दिव्यदर्शी और प्रकटीकर्ता के रूप में समर्थन दिया गया है उन लोगों की उनके ज्ञान के संबंध में आत्मिक उपहार देता है। उनके पास लोगों को गिरजा के अध्यक्ष की संपूर्ण शक्ति और प्रतिकार के अधीन परमेश्वर की विचार और इच्छा बनाते बताने का हक शक्ति और अधिकार है। अन्य जनरल अधिकारियों को इस विशेष आत्मिक उपहार और अधिकार नहीं दिया गया है। उनकी शिक्षा को तय करते हुए उन पर उसकी परिणाम सीमाएं हैं और उनकी शक्ति और शिक्षा में अधिकार पर परिणाम सीमा प्रत्येक अन्य अधिकारी और गिरजा के सदस्य पर लागू होती है। उद्धारकर्ता कैसे अपनी इच्छा और सिद्धांत भविष्यवक्ताओं, दूरदर्शियों और प्रकटीकर्ताओं को प्रकट करते हैं? वे सिद्धांत वे संदेह वाहक या स्वयं व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। आत्मा से आत्मा के की बातचीत शब्दों या अनुभूतियों द्वारा हो सकती है, जिन्हें शब्दों के द्वारा समझाना कठिन होता है। वह स्वयं अपने सेवकों को व्यक्तिगत रूप से या परिषद के रूप में निर्देश दे सकते हैं। मैं नए नियम से दो उदाहरण देता हूँ। प्रेरितों के काम की पुस्तक में आरंभ में हम पाते हैं कि मसीह के प्रेरित सुसमाचार संदेश केवल यहूदियों को ही घोषित किए जाते थे। वे यीशु के नमूने का उदाहरण कर रहे थे। अब प्रभु की समय सारणी में बदलाव का समय आ गया था। यफा ने पत्सर ने एक सपना देखा था जो तीन बार दोहराया गया था। पत्सर खाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनमें कुछ जानवर मूसा की व्याख्या के अनुसार खाने के लिए अपवित्र, और पत्सर ने इस तरह के जानवरों को खाकर कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। इस सपने का अर्थ स्पष्ट हो गया जब इसके जल्द बाद रोमी सेनापति कॉर्नेलियस ने बहुत से लोगों को पत्सर के पास भेजा कि वह आकर उनके स्वामी को शिक्षा दें। परमेश्वर ने मुझे बताया कि यह किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न करूं। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते, वरन हर जाति में जो उसने डरता और धर्म के काम करते हैं वे उसे भाते हैं। पत्सर ये बातें कही ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सबसे सब सुनने वालों पर उतर आया और पत्सर के साथ आए थे। वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ाला गया। फिर पत्सर ने कहा, क्या कोई जल की रोक सकता है कि अब बपतिस्मा न पाए जिन्हें पवित्र आत्मा पाया है? पत्सर प्रेरितों के काम की पुस्तक में बाद हम दूसरा मिलता जुलता वर्णन पाते हैं। इस समय यह बताता है कैसे सिद्धांत के विषय में प्रकटीकरण परिषद में मिल सकता है। खतना के विषय में मतभेद हुआ कि क्या मूसा के नियम के अनुसार इसे आज्ञा के सुसमाचार और गिरजा में शामिल किया जा रहे हैं। इस परिषद के विषय में हमारे अभिलेख निश्चित रूप अधूरे हैं, लेकिन बहुत वाद विवाद करने के बाद हमें कहा गया पत्सर परिषद प्रेरित ने खड़े होकर वह कहा जो पवित्र आत्मा ने उसे स्पष्ट किया था। उन्हें कहा परमेश्वर विश्वास के द्वारा उन मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जैसे न हमने बाप दादे उठा सकते थे और न हम उठा सकते। लेकिन हमारा यह तो निश्चय है कि जिस रीति से वे यीशु के अनुग्रह से उधार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। इस पत्र में निर्णय की घोषणा करते हुए प्रेरितों ने कहा पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा, या अन्य शब्दों में यह निर्णय दिव्य प्रकटीकरण से पवित्र आत्मा द्वारा आया है। इन्हीं स्वरूपों को आज यीशु मसीह के पुनर्स्थापित गिरजा में पालन किया जाता है। गिरजा के अध्यक्ष उसे मिले प्रकटीकरण के आधार पर सिद्धांतों की व्याख्या या घोषणा करते हैं। सिद्धांतिक व्याख्या प्रथम अध्यक्षता और 12 प्रेरितों की संयुक्त परिषद में भी आ सकता है। परिषद के विचार विमर्श में अक्सर घोषित धर्मशास्त्र की तुलना गिरजा में मार्गदर्शकों की शिक्षाएं और पूर्व चलन को शामिल किया गया है। यह वह प्रक्रिया है जिनमें प्रभु का मन और इच्छा पाने के लिए तर्क और विश्वास दोनों शामिल हैं। इसके साथ साथ यह याद रखना चाहिए कि अतीत या वर्तमान में गिरजा में मार्गदर्शक द्वारा दिए गए सभी कथन अवश्य पूर्वक से सिद्धांत नहीं बनते हैं। गिरजा में यह सामान्य रूप से समझा जाता है कि एक मार्गदर्शक द्वारा दिए गए कथन उसे विशेष अवसर के लिए व्यक्तिगत विचार होता है। हालांकि भली भांति विचार करके कहा जाता है यह संपूर्ण गिरजा के लिए अधिकारी या भारतीय नहीं होता। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने सिखाया था। भविष्यवक्ता इस बिंदु तक एक सरल कहानी की तरह में मेरे पिता ने मुझे बताया था। भाई ब्रिगम यंग ने सुबह की सभा में लोग को घोषणा जोशपूर्ण भाषण दिया था आने वाली सेना के बचाव और उनके सामने करने और उन्हें वापस दौड़ाने की बात की थी। शाम के सभा में वह खड़े हुए और कहा कि ब्रिगम यंग ने सुबह बोला था लेकिन अब प्रभु बातें करेंगे। तब उन्होंने जो भाषण दिया था उसका स्वर जो उन्होंने सुबह बोला था उससे भिन्न था। सदस्यों के शरीर में पवित्र आत्मा की गवाही द्वारा गिरजा जानेंगे कि भाईजन जो अपनी बात कह रहे हैं वह पवित्र आत्मा द्वारा बोली जा रही है और उचित समय पर वह ज्ञान प्रकट किया जाएगा। भविष्यवक्ता जो स्मिथ ने हमारे सिद्धांत में उद्धारकर्ता की केंद्रित भूमिका को निश्चित वाक्य में पुष्टि की थी। हम धर्म के मूलभूत सिद्धांत प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की यीशु मसीह के संबंध में कि वह हमारा गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में चला गया गवाही है और अन्य सारी बातें हमारे धर्म में संबंधित रहती हैं, इसी से जुड़ी हुई हैं। जोसेफ स्मिथ की गवाही कि वह जीवित है क्योंकि उसने उसे देखा था परमेश्वर के दाईं हाथ ओर और उसने यह प्रमाण देते वाणी सुनी थी कि वही पिता का इकलौता बेटा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस संदेश को सुनते या पढ़ते हैं वे यीशु मसीह के दिव्य चरित्र प्रायश्चित और पुनः जीवित होने की उसी गवाही को पाएं, उनके संदेश को पश्चाताप करके बापतिस्मा लेके पवित्र आत्मा का उपहार पाकर स्वीकार करें और फिर अपने जीवन भर यीशु मसीह के सुसमाचार के नियम को संबंधों को पालन करें। जबकि यीशु मसीह भगवान के पुत्र हैं, अतीत के भविष्यवाणी के वही मसीह हैं, वे ही मसीह जो गेतसेमनी में पीड़ित हुए थे, सलीब पर मरे और गाड़े गए, अवश्य ही तीसरे दिन वे उठे थे, वही जीवित हुए हैं, पुनर्जीवित प्रभु जिसके द्वारा हम पुनर्जीवित होंगे और उनके द्वारा सभी। ये हमारा सिद्धांत है, यह हमारा सिद्धांत है जो यीशु मसीह की सभी पूर्व गवाहियों को पुष्टि करता है। ईसा मसीह के नाम में आमीन।
We are grateful.
आज सुबह सुंदर संगीत देने के लिए हम मॉर्मन गायक मंडली और उनके संचालकों और वादकों के आभारी हैं। इस सत्र के अंतिम वक्ता हमारे प्रिय भविष्य वक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन होंगे। उनके संदेश के बाद गायक मंडली कम द फाउंट ऑफ एवरी ब्लेसिंग गाकर सभा का समापन करेगी। उसके बाद समापन प्रार्थना सत्तर के एल्डर पर जी माम द्वारा की जाएगी।
My beloved brothers and sisters, this morning I wish to speak to you of eternal truth.
आज मैं तुम्हें शाश्वत सच्चाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ। वो सच्चाइयाँ जो जीवन संपन्न करेगी और घर सुरक्षित पहुँचाएगी।
Everywhere people are in a hurry.
जेट विमान इसके मूल्यवान इंसानों को माल को तेजी से द्वीपों और समुद्रों के पार पहुँचाती है ताकि लोग अपने व्यावसायिक बैठकों पर पहुंच पाए और छुट्टी मनाए, रिश्तेदारों से मिले। हर जगह रास्ते, हाईवे, फ्रीवे और मोटरवे, लाखों गाड़ियां जिनमें लाखों लोग, लगता है जैसे एक निरंतर धारा, लाखों कारणों के लिए वो जल्दी जल्दी अपना व्यवसाय हर दिन करते हैं। इस तेज रफ्तार की जिंदगी में हम कभी रुककर सोचते हैं शाश्वत सच्चाइयों के बारे में? शाश्वत सत्य की तुलना में दैनिक जीवन के सवाल और चिंताएं तुच्छ हैं। हम भोजन के लिए क्या खाएं? हम लिविंग रूम का कौन सा रंग लगाएं? हम जॉनी को फुटबॉल खेलने भर्ती कर दें? कब जब संकट के समय आता है, हम कई प्रजाजन घायल होते हैं। ये सवाल और अनेक सवाल तुच्छ बनते हैं। जब तंदुरुस्त घर में बीमारी आती है, जब जीवन की ज्योति मंद होने लगती है, हमारे विचार तुच्छ बातों को छोड़कर सचमुच महत्वपूर्ण बातों पर केंद्रित होते हैं। हाल ही में एक औरत से मिला जो एक खतरनाक बीमारी से सालों से उलझ रही थी। उसने कहा कि बीमारी से पहले उसका जीवन मामूली कार्यों से मशगूल था, जैसे घर सफाई और बढ़िया चीजों से सजाना। वो अपने केश सजाने हफ्ते में दो बार जाती थी और महीने में कपड़े खरीदती थी अलमारी भरने के लिए। सिर्फ कभी कभी कभार वो पोतों को बुलाती थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि वो कीमती चीजें उसकी टूट जाएंगी उनके लाभ परवाह छोटे हाथों से। फिर उसे चौंकाने वाली खबर मिली कि उसकी जान खतरे में है और उसे यहाँ बहुत कम समय बचा है। उसने कहा जिस क्षण उसे वो रोग निदान मिला, उसे पता पड़ा कि जो वक्त बचा है उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताना चाहिए, सुसमाचार पर जीवन केंद्रित करते हुए, क्योंकि वे बातें उस सबसे ज्यादा अजीज थी। स्पष्टता की इस तरह के क्षण हम सभी के कभी न कभी आते हैं, हालांकि शायद ये इस नाटकीय तरीके से नहीं आते। हम साफ देखते हैं कि हमारे जीवन की महत्वपूर्ण क्या है और कैसे जीना चाहिए। उद्धारकर्ता ने कहा, अपने लिए धरती पर भंडार मत भरो, क्योंकि उसे कोड़े और जंग नष्ट कर देंगे और उसे चोर चुरा सकते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में भंडार भरो, जहां उसे कोड़े या जंग नष्ट नहीं करेंगे और चोर भी नहीं चुरा लाएंगे। क्योंकि जहां तुम्हारा भंडार रहेगा, वहीं तुम्हारा दिल भी रहेगा। सबसे गहरे चिंतन की जरूरत के समय आदमी की आत्मा स्वर्ग से पूछते हैं, जिंदगी के बड़े सवाल का दिव्य जवाब पाने, हम कहां से आए, हम यहां क्यों हैं, इस जिंदगी के बाद क्या होंगे। इन सवाल का जवाब किताबों के बंदों के पन्नों के बीच हम नहीं पाएंगे, ना ही इंटरनेट खोजते हुए उसे पाएंगे। ये सवाल इस निष्फल जीवन के पार है, ये शाश्वत काल के बारे में है। हम कहाँ से आए, ये सवाल कोई न सभी कभी न कभी पूछते हैं। धर्मदूत पौलुस ने एथेंस में मार्स हिल पहाड़ पर कहा कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर हमारे नश्वर माता पिता ने पैदा किए हैं। हम पौलुस के शब्दों पर गौर करना चाहिए। प्रभु ने कहा है, आत्मा और शरीर आदमी की रूह है, तो आत्मा परमेश्वर की संतान है। इब्रानियों के लेखक ने उसे हमारे आत्माओं का पता कहा है। सभी इंसानों को की आत्माएं उनकी वाकई में पुत्र और पुत्रियां हैं। हम मानते हैं कि प्रेरित कवियों ने हमारे सोच विचार के लिए इस विषय पर हृदय स्पर्शी संदेश और उत्कृष्ट विचार लिखे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये सच लिखा, हमारा जीवन एक नींद और भूलना है। ये रूह जो हमारे साथ उठती है, हमारे जीवन का तारा, कहीं और बनाया गया है और दूर से आता है, पर सब कुछ भूलकर नहीं, पर पूरे नंगेपन में नहीं, पर महिमा के अनुगामी बादलों के साथ, परमेश्वर से जो हमारा घर है। स्वर्ग हमारे बचपन को घेरता है। माता पिता अपनी जिम्मेदारी पर गौर करते हैं, उसे सिखाने, प्रेरणा, निर्देशन और मिसाल देने। जैसे माता पिता सोचते हैं, बच्चे खास तौर पर युवक यह गहरा सवाल पूछते हैं, हम कहां से आए हैं। अक्सर ये चुपचाप दिल से पूछा जाता है। हम कितने आभारी हैं कि एक विवेकी निर्माता ने पृथ्वी बनाई और हमें यहाँ रखा। पिछले जीवन को कैसे जैसे एक घूंघट के पीछे भुलाते, ताकि हम परीक्षण के समय से गुजर पाए और हमें मौका मिले अपने आप को साबित करने। परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हुई बातों के योग्य बने। जाहिर है पृथ्वी पर रहने का एक मुख्य वजह है मांस और हड्डियों का शरीर पाना। हमें चुनाव करने का उपहार दिया गया है। हजार तरीकों से हम चुनाव करने भाग्यवान हैं। हम अनुभव के कठिन दौरा से सीखते हैं। हम भलाई बुराई पहचानना सीखते हैं। हम कड़वे और मीठे के अंतर सीखते हैं। हम पहचानते हैं कि हमारे कर्मों के नतीजे होते हैं। परमेश्वर के आज्ञा पालन से हम उस घर के योग्य बन सकते हैं जिसकी बात यीशु ने की थी, जब उसने कहा, मेरे पिता के घर में कई महल है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हम जवानी में महिमा के अनुगामी बादलों के साथ आते हैं, पर जिंदगी निष्ठुर ढंग से बढ़ती है। بچپن کے بعد جوانی آتی ہے اور بوڑھپن چپ چاپ آتا ہے. زندگی کی راہ سے گزرتے ہوئے انوبھاؤں دوارا ہم سورگ کی اور سہایتا کے لیے عرض کرتے ہیں. پرمیشور ہمارے پتا نے, یشو مسیح ہمارے پربھو نے سدھتا کی راہ سپشٹ کی ہے, ہمیں بلایا ہے شاشوت سچ پانے اور سدھ بننے جیسے وہ سدھ ہیں. دھرمدوت پولوس نے جیون کی تلنا دوڑ سے کی ہے. عبرانیوں سے اس نے کہا, ہم جھٹک دیں گھرنے والے پاپوں کو اور دھیروج دے ہمارے سامنے کا دوڑ دوڑے. ہمارے اتساہ میں ہم صبح پردیشک کی صلاح نظر انداز نہ کریں. اور دوڑ ہمیشہ تیزی سے نہیں یا شکتی سے نہیں جیتی جاتی, واستو میں انت تک قائم رہنے والا جیتتا ہے. جب میں زندگی کی دوڑ کے بارے میں سوچتا ہوں, مجھے بچپن کی ایک دوڑ یاد آتی ہے. میرے دوست اور میں ہاتھ میں چھویا لے کر کوکر ویلو پیڑ کی نرم لڑکی کی چھوٹی چھوٹی ناویں بناتے تھے. ترکونی آکار کے کاپس سے پال لگا کر ہم ان ناووں کو پرو ندی کے اشانت پانی میں دوڑ لگاتے تھے. ہم ندی کے کنارے سے دوڑتے اور ان چھوٹی چھوٹی ناووں سے اس تیز پرواہ میں اوپر نیچے جاتے, ناچتے اور کبھی گہرے پانی میں شانتی سے جل یاترا کرتے ہوئے دیکھتے. ایک دوڑ کے سمے ہم نے دیکھا کہ ایک ناؤ سبھی ناؤں کے آگے انتم رکھا کی اور جا رہی تھی. اچانک پرواہ ایک بڑے بھورے کے قریب لے گیا, ناؤ کو ایک اور موڑی اور الٹا الٹ گئی. وہ گول گول گھومتی ہوئی پھر مکھی پرواہ میں لوٹ نہیں پائی. آخر وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے بھاگوں کے ساتھ کئی سے گھری گھسی پٹی رک گئی. ان کھیل کی ناووں میں استھرتا کے لیے الٹنا نہیں تھا, نہ ہی رڈر دشا دینے شکتی کا سروت بھی نہیں تھا. انیواریہ ان کی دشا کا پرواہ کی اور تھا, سب سے کم وروتھ کا راستہ. کھول کی ناووں کے وپریت ہمیں دیویہ گن دیے گئے ہیں یاترا میں نردیشن دینے. ہم جیون کی دھارا کے ساتھ بہنے پر وچار کرنے کی اور منزل پہنچنے کی شکتی کے ساتھ آئے ہیں. ہمارے سوگیہ پتا نے ہمیں شاشوت یاترا میں سرکشت لوٹنے کا سادھن کے ساتھ ہی بھیجا ہے. میں پرارتھنا کی بات کرتا ہوں, اس شانت ستھر آواز کی بات کرتا ہوں. ہمیں پوتر دھرمی شاستر نظر انداز نہیں کرنے چاہیے, نہ ہی جن میں پربھو اور پیغمبروں کے سندیش ہیں. یہ سندیش انتم رکھا پار کرنے ہمیں سہایتا دینے کے لیے ہیں. ہمارے نشو جیون کے میں آئیں گے وہ غلطی کے قدم, وہ فکی ہنسی, وہ بیماری کا درد, وہ گرمی کا بھاگنا, شرد ہوتی کا پاس آنا, وہ سردی کی سرد, اور وہ انوبھو جسے ہم موت کہتے ہیں. اس وچارشیل ویکتی نے سوال پوچھا ہوگا جو ایوب نے پوچھا, اگر آدمی مرے گا کیا وہ پھر جیے گا؟ من سے نکالنے کی ہم جتنی بھی کوشش کریں وہ لوٹتا ہے. موت سبھی کو آتی ہے, وہ بوڑھوں کو آتی ہے جیسے وہ دبلتا کے قدم اٹھاتے ہیں, وہ انہیں بھی آتی ہے جو جیون کی راہ کے بیچ ہیں. अक्सर छोटे ननहम बेटे की हंसी चुप करते हुए, पर मौत के बाद जीवन का क्या? क्या मौत सभी का अंत है? रॉबर्ट ब्लैचफोर्ड ने उसकी किताब परमेश्वर और मेरा पड़ोसी में ईसाई विश्वासों पर आक्रमण किया, जैसे परमेश्वर, यीशु, प्रार्थना और अमरता। उसने जोर दिया कि मौत अस्तित्व का अंत है और कोई भी कुछ और साबित नहीं कर सकता। फिर आश्चर्यजनक बात हुई, संदेह की दीवार मिट्टी में मिल गई। वो बिना सहारे रह गया। धीमे धीमे वह उस विश्वास की ओर लौटा जिसकी उसने हंसी उड़ाई थी। उसका दृष्टिकोण क्यों बदला? उसकी पत्नी का देहांत हुआ। टूटे दिल से वो कमरे में गया जहां उसका प्रेत पड़ा था। उसने उस चेहरे की ओर देखा जिससे उसने प्यार किया था। बाहर आते हुए उसने दोस्त से कहा, वो वही है और नहीं भी, सब बदल गया है, कुछ पहले था जो अब नहीं है, वो बदली है। क्या चला गया था? उसकी रूह चली गई थी और क्या? बाद में उसने लिखा, मौत वो नहीं जो लोग सोचते हैं, वो दूसरे कमरे में जाने के समान है। उस दूसरे कमरे में हम पाए गए वो प्रिय पुरुष, औरतें, बच्चे जो हमने खोए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है। ये सच्चाई जीवित पैगंबरों ने सदियों से सिखाई है। ये हमारे पवित्र धर्मशास्त्रों में पाई जाती है। मॉर्मन की किताब में हम ये आरामदायक शब्द पढ़ते हैं। अब रोहो की मौत के मृत्युत्थान के बीच स्थिति के बारे में देखो, मुझे देवदूत द्वारा पता पड़ा है कि आदमियों की आत्माएं जैसे इस नश्वर शरीर से निकलती है, सभी आदमियों की आत्माएं चाहे अच्छी हो या दुष्ट, घर उस परमेश्वर के पास जाती है जिसने उन्हें जन्म दिया। फिर ऐसा होगा कि वो आत्माएं जो नेक है वो खुशी की जगह स्वीकार की जाएगी जिसका नाम स्वर्ग है, और विश्राम और शांति की जगह जहाँ वो परेशानी और दुख दर्द से आराम पाएंगे। मुक्तिदाता के क्रूस पर चढ़ने के बाद, शरीर के कब्र में 3 दिन रहने के बाद आत्मा फिर लौट आई। पत्थर निकाला गया और पुनरुत्थान किया हुआ मुक्तिदाता बाहर चला, मांस और हड्डी की अमर शरीर पहने। अय्यूब का सवाल, अगर आदमी मरे तो क्या वो फिर जाएगा, का जवाब है, जब मरियम और साथी कब्र पहुंचते चमकते वस्त्र पहनते आदमियों को देखा, जीवित को मुर्दे को मत ढूंढो, वो यहाँ नहीं है, वो उठ गया। मसीह की मौत पर विजय के बाद हम सभी का पुनरुत्थान होगा। ये रूह की मुक्ति है। पौलुस ने लिखा, कुछ देह दिव्य होते हैं और कुछ पार्थिव, किंतु दिव्य देह का आभा एक प्रकार का होता है और पार्थिव शरीरों का दूसरे प्रकार का। हमारे दिव्य महिमा चाहिए। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं। हम शाश्वत परिवार में सदस्यता चाहिए। ये आशीष हम कमाते हैं जिंदगी भर प्रयास, खोज, पछतावे के बाद और आखिर सफलता पाकर। हम कहां से आए? हम यहां क्यों हैं? जीवन के बाद हम कहां जाएंगे? इन विश्व भर के सवालों का अब बिना जवाब रहने की जरूरत नहीं है। मेरे हृदय की गहराई से मैं बयान देता हूं कि मैंने कही बातें सच्ची हैं। हमारे आज्ञा पालन पर स्वर्गीय पिता आनंदित होते हैं। वो खोए बच्चों के लिए चिंतित है, मंद किशोरी के लिए, भटके युवा के लिए, दोषी पालक के लिए। नम्रता से मसीह ने इनकी ओर सबूत से कहते हैं, लौट आओ, ऊपर आओ, अंदर आओ, घर आओ, मेरे पास आओ. हर हफ्ते में हम एक हफ्ते में हम ईस्टर मनाएंगे. हम मसीह के जीवन पर गौर करेंगे, उसकी मौत और पुनरुत्थान पर. उसका खास गवाह होने के नाते मैं बयान देता हूँ कि वो जीवित है और हमारी विजयी लौटने के लिए उत्सुक है. हम विजयी लौटेंगे. ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता के पवित्र नाम में करता हूँ.
Our Savior and our Redeemer. Amen.
Amen.
Our Heavenly Father,
we are so grateful
to be able to report the
impact.
And we do it with reverence. Thankful for this wonderful session of
General Conference.
We're grateful that we have been in the presence
of
apostles and prophets. That they have been endowed with special powers. Stabilizing our lives, helping us to have eternal perspective of everything that pertains to this earth life. And we pray humbly that we in our own circumstances may stand as witnesses for thee
and the gospel
through words and through examples. And by convincing power, so that we all may stand for truth and righteousness and
be
light unto the world.
We thank thee again, Father,
and express this prayer unto thee in the sacred name of Jesus Christ.
Amen.
Amen.
यह द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटरडे सेंट्स का 182nd जनरल सम्मेलन था। इसमें गिरजा के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों में से चुने गए वक्ता ने संबोधन किया और इस सत्र का संगीत मॉर्मन गायक मंडली द्वारा दिया गया। यह प्रसारण बॉनिवल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम का नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य प्रयोग वर्जित है।